धवला पुस्तक तेरवी लेक्चर नंबर 9 ओम नमः सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य ओम शुद्धात्मने नमः नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वच्छायाणं नमो लोए सौवसाहूणं मुनिसुवयजिनवसहं सुवयमुनिवसः सन्तु अम्नमिहुं कम्माणुयोयमिणमो वोक्षमणेयत्थगन्थगयम् आचार्य श्री वीरसेन स्वामी रचित यह धवला नामक टीका है जो षटखंडागम ग्रंथ पर लिखी हुई है जिसके कर्ता है पुष्पदंत और भूतबली आचार्य। इसमें जो पांचवा खंड है उसका नाम है वर्गणा खंड और वर्गणा खंड का भी हम कर्म अनुयोग द्वार देख रहे हैं और इस तेरहवीं पुस्तक के पृष्ठ संख्या 83 पर हम आ गए 83। यहाँ हम ध्यानों की जो बारे में धर्म ध्यान की बात हमने देखी, शुक्ल ध्यान की भी बात अब यहाँ चल रही है। हमने तो दो शुक्ल ध्यानों का तो कथन पढ़ा है, उसके बाद हमने ये सूक्ष्म क्रिया अप्रतिपाती वो केवली भगवान के तेरहवें गुणस्थान में होता है जब वो योग का निरोध करते हैं तब। इन्हें केवली के लिए योग का निरोध ही ध्यान कहलाता है और बाकी जो छद्मस्थ के लिए जिसको हम कहेंगे एकाग्र चिंता निरोधो ध्यानम ये जो परिभाषा है और वो भी ध्यान कौन से वो श्रेणी वाले ध्यान की बात है कि वो तो उत्तम सहनन वाला है, अंतर्मूर्तक होता है, एक ही पदार्थ पर वो टिकता है। और फिर यहाँ अन्यत्र तो हमने श्रेणी में तो शुक्ल ध्यान देखे थे, यानी कौन से शुरुआत से ही वो तो पृथक्त्व वितर्क देखा था, पर यहाँ इस पुस्तक में 11वें गुणस्थान तक तो धर्म ध्यान स्वी 10वें तक जहाँ तक कषाय है तब तक। क्यों धर्म ध्यान? क्योंकि एक पदार्थ पर जो उनका जो ध्यान रहता है वो जो अंतर्मूर्त है उससे 11वें वाले का जो अंतर्मूर्त है एक पदार्थ के बारे में वो बड़ा है, संख्यात गुणा बड़ा है, एक बात तो ये है। और सकषाय अवस्था में जो बताया जाता है वो तो धर्म ध्यान कहा है और अकषाय जीवों को जो है वो शुक्ल ध्यान बताया गया। कौन से चार धर्म ध्यान के चार? हाँ, एकत्व वितर्क तो शुरुआत में तो एकत्व वितर्क ही होगा 12वें में भी। और धर्म ध्यान शुक्ल ध्यान के चार ऐसे है, पहले में पहले पृथक्त्व वितर्क विचार, यानी वो पलटना होता है। कोई भी नहीं, वो क्रम से ही, क्रम से नहीं, पृथक्त्व है, उसका विषय अलग अलग हो सकता है। द्रव्य से द्रव्यांतर, योग से योगांतर जो है, यानी यहाँ वितर्क का अर्थ है श्रुत और इसीलिए पूरे आगम को जानने वाले ही उन्हीं को ये ध्यान होता है, इसलिए उसको 14 पूर्वी वाले, 9 पूर्वी और 10 पूर्वी कहा था, उन्हीं को ये बात होते है। और इवन शिवभूति के लिए भी बीज बुद्धि वालों को ग्रहण किया है वहां पर, यानी भले उनका अभी पहले क्षोभ समय साल पर बताया था परंतु उनके भी वो बीज बुद्धि के कारण वो सब ज्ञान प्रकट हो जाता है, इसी बात यहाँ बताई गई। अभी सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाते ने क्या होता है तो योग का निरोध होता है, एक बात। अब यहाँ पेज नंबर 83 पर हमने 72 नंबर की गाथा पढ़ी थी तो ना ये विषय में गाथा है, पढ़ना नहीं, 72 पढ़ते हैं फिर। यहाँ संक्रांति का अभाव है सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाते में, क्योंकि देखो पहले तो छद्मस्थ में तो वो तो एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ पर उपयोग जाता है। और यहाँ केवली भगवान को त्रिकालवर्ती सभी पदार्थ उनके ज्ञान गोचर हैं, इसलिए वहाँ ऐसा पलटना तो नहीं होता है। तो इसलिए उस ध्यान में संक्रांति का अभाव है ऐसा बताया था। उसके विषय में गाथा अभी हम पढ़ेंगे 72 नंबर के ऊपर। अविदक्कम विचारम सुहम क्रिय बंधनम तदीय सुखम सुहमम निकाय जोगे भणिदम तम सौवभावगयम। देखो ये 72 को पढ़े पहले। तीसरा शुक्ल ध्यान, कौन सा? ये सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाति वाला, वो अवितर्क है। अवितर्क यानी वो श्रुत नहीं, अभी तो केवल ज्ञान है। वितर्क तो श्रुत को कहा था, इसको अवितर्क कहा। अविदक्कम, अविचार, अविचार यानी वो पलटना नहीं होता, संक्रम से रहित है और सूक्ष्म क्रिया से संबंध रखने वाला होता है। सूक्ष्म क्रिया ने यहाँ योग, यानी सूक्ष्म योग होता है और फिर योग का निरोध होता है, क्योंकि काय योग के सूक्ष्म होने पर सर्वभावगत यह ध्यान कहा गया है। काय योग के सूक्ष्म होने पर यानी 13वें गुणस्थान के अंत में जब काय योग सूक्ष्म किया जाता है, यानी पहले में पहले काय योग में रहते हुए, बादर काय योग में रहते हुए मनोयोग, बादर मनोयोग, बादर वचन योग और श्वासोश्वास को सूक्ष्म किया जाता है, फिर जीव सूक्ष्म काय योग में रहता है और जो सूक्ष्म किया हुआ अन्य जो है ना, फिर काय योग भी सूक्ष्म होता है, फिर सूक्ष्म काय योग में रहते हुए एक एक योग का निरोध होता है, मनोयोग का, वचन योग का, श्वासोश्वास का निरोध होता है, तब तक वो सूक्ष्म काय योग में विद्यमान है, फिर सूक्ष्म काय योग का भी निरोध कर देते हैं। तो यहाँ कहते हैं काय योग के सूक्ष्म होने पर सर्वभावगत यह ध्यान कहा गया है। नीचे कुछ अलग पाठ है क्या? सर्वभावगत नहीं, नहीं, वो भगवती आराधना का सूत्र बस इतना ही है। सर्वभावगत नहीं, वो तो केवल ज्ञानी की बात है ना। हाँ, अभी आगे 73 नंबर। सुहमम्मिकाय जोगे वट्टन्तो केवली तदीय सुक्कम झायदि निरुम्भिधुम जो सुहमम तम काय जोगम्पी। जो केवली जिन सूक्ष्म काय योग में विद्यमान होते हैं वे तीसरे, वो तसरे दिख रहे, तीसरे शुक्ल ध्यान का ध्यान करते हैं। ये ध्यान का ध्यान करते हैं ना, शुक्ल ध्यान उनके होता है और उस सूक्ष्म काय योग का भी निरोध करने के लिए उसका ध्यान करते हैं। यानी वो तो सूक्ष्म करना ये भी, हाँ उसी को ध्यान शब्द में से कहना, यानी वो योग सूक्ष्म हो जाता है और फिर वो तो सूक्ष्म योग का भी निरोध होता है, इसको सब ध्यान कहने में आता है, बस इतनी बात है। अब ये जो जैसे छद्मस्थ हो या अभी मिथ्या दृष्टि हो तो क्या सोच समझ कर ऐसा ध्यान के लिए, ऐसा थोड़ा ही होता है, वहां तो सहज रूप प्रक्रिया है ये। अब इसका भावार्थ कहते हैं, केवल ज्ञान और केवल दर्शन के उत्पन्न हो जाने के कारण जो त्रिकाल विषयक सब द्रव्य और उनकी सब पर्यायों को जानते हैं और देखते हैं। केवली भगवान ने पहले श्रुत का आलमन वितर्क था, 12वें के अंत में भले एक पदार्थ पर, एक किसी विषय पर, एक योग के द्वारा वहां पर उनका उपयोग केंद्रित था, अब अंतर्मूर्त में क्या हो गया, पूरा ही प्रकट प्रत्यक्ष हो गया। पहले तो परोक्ष ज्ञान था, भले वो 14 पूर्वी है, ऐसा कोई आश्चर्य नहीं कि अरे ये क्या है, नहीं तो केवल ज्ञान होने पर आश्चर्य हो जाएगा। जो कुछ जाना है श्रुत के द्वारा वो प्रत्यक्ष हो गया है, है ना। तो कहते उन सब प्रत्यक्ष वो जानते देखते। करण, करण यानी इंद्रिया साधन, क्रम और व्यवधान से रहित होकर। ये केवल ज्ञान कैसे है? करण से रहित, साधन से रहित। पहले तो छद्मस्थ अवस्था में इंद्रिया मन आदि जो रहते थे साधन, जिसको निमित्त कहेंगे हम, इनसे रहित है, क्रम से रहित है, पहले दर्शनोपयोग फिर ज्ञानोपयोग ऐसा क्रम था, अब ये क्रम से रहित युगपत होता है और व्यवधान से रहित, व्यवधान है ना बाधा से रहित, उसमें कोई बाधा नहीं है क्योंकि क्षोभशम ज्ञान हीनादिक होता है ना, तो उसमें बाधा भी वो मात्र कर्म के कारण बाधा है ऐसा सामान्य से कह सकते हैं, परंतु वो इटसेल्फ बाधा सहित ज्ञान है, रहित होकर जो अनंत वीर्य के धारक है तथा जो असंख्यात गुणी श्रेणी रूप से कर्मों की निर्जरा कर रहे हैं। ये असंख्यात गुणी निर्जरा तो चल ही रही थी, बारहवें में भी पूर्ण वितराग है, तेरहवें में भी पूर्ण वितराग है, प्रति समय बढ़ी ही नहीं, वैसे के वैसे रहती है, परंतु असंख्यात गुणा चल रही है। ऐसे संयोगी जिन कुछ कम पूर्व कोटि काल तक विहार कर, कुछ कम पूर्व कोटि क्यों कहा, क्योंकि अर्लीएस्ट केवल ज्ञान कब हो सकता है, 8 वर्ष के बाद संयम धारण करके अंतर्मुहूर्त में श्रेणी चढ़ी शपकिरणी, तो अभी पूरा उर्वरित काल 13वें में रहकर लास्ट में केवल एक छोटा अंतर्मुहूर्त 14वें में बिताएंगे, बाकी काल उनका 13वें गुणस्थान का होगा। तो कुछ कम पूर्व कोटि काल तक विहार कर आयु के अंतर्मुहूर्त काल शेष रहने पर, आयु का भी अंतर्मुहूर्त काल है और वो तो 14वें का, और उसके पहले अंतर्मुहूर्त यानी 13वां समाप्त होने के अंतर्मुहूर्त पहले समुद्घात करते हैं ना, रहने पर दंड कपाट प्रतर और लोभ पूर्ण समुद्घात करते हैं। ये समुद्घात के पहले जो अवस्था है उसका क्या नाम है याद है क्या, भूल गए, कुछ करण कहते हैं उसको, यानी समुद्घात के सन्मुख होना ही वही वो करण है। ना आवर्जित करण नाम है उसका, आवर्जित करण नाम, बस वो सन्मुख पना है, बस इतना ही उसमें होता है। तो पहले समय में वो चार समय में चार चार अलग अलग जो होते, पहला दंड फिर कपाट प्रतर और लोकपुरण, उसमें जो प्रथम समय में कुछ कम 14 राजु उत्सेद रूप, उत्सेद यानी उसकी वर्टिकल हाइट ऊंचाई, कुछ कम क्यों कहा, नीचे के और ऊपर के वात वाले को छोड़कर, नीचे का वात वाले 20-20-20 60,000 योजन वाला है और ऊपर कितना है
13-14-15 टोटल,
एक योजन में 425 कम, दो कोस एक कोस और 1575 धनुष, धनुष हाँ, और वो महाधनुष नहीं, तो 1575 धनुष में 525 धनुष वाले केवली विराजमान है ऐसा अगर कहेंगे
लोक के बाहर,
तो कि तो वंथड़ हो जाएंगे, लोक के बाहर कैसे जाएंगे, 1575 में 525 उसका वंथड़ नहीं है, वो महायोजन है, उसको महायोजन, ये ऑर्डिनरी योजन। तो कहते हैं देव कुछ कम 14 राजू उससे द्रूप और हाँ दो कोस नहीं, पूरे एक योजन का ये पार्ट है, एक योजन में 4 कोस होते हैं, तो एक योजन में 425 कम, 1575 नहीं 425 कम, क्योंकि 2000 योजन का 2000 धनुष का एक कोस होता है, इसलिए पहला जो पृथ्वी को समीप वाला जो वात वलय है वो 2 कोस, फिर 1 कोस और वो तनु वात वलय वो है 1 कोस में भी कम, तो कितना है धनुषों में 1575 धनुष। इसलिए कुछ कम 14 राजु उत्सेद रूप और अपने विष्कम्भ रूप गोल परिवेद रूप, क्या कहना चाहते हैं, जैसे बैठे हैं या खड़े हैं, उनकी जो कुछ विड्थ होगी, बैठने पर ऐसे हम वो पैरों के कारण ऐसे बैठ जाए, तो जो उसको डायमीटर बना के ऐसा गोल, ऐसा नहीं कि आगे पीछे भी ऐसा डायमीटर लेना नहीं, पूरा गोल, परंतु मैक्सिमम डायमीटर लेना, जैसे खड़े है तो पूरे शोल्डर जितने ऐसे हो जाते हैं उसके अंदर आ जाएगी पूरे, और बैठे तो जैसे ऐसे बैठे हैं तो यहाँ से यहाँ तक पैरों के उसका डायमीटर लेना, और उतना गोल आकार यानी खंबे जैसा इसलिए कहते विष्कंभ प्रमाण यानी डायमीटर प्रमाण गोल परिवेद रूप आत्म प्रदेश कर स्थिति के असंख्यात बहुभाग का और अनुभाग के अनंत बहुभाग का घात कर स्थित रहते हैं। इसका अर्थ क्या है? एक समय में स्थिति कांडक घात होता है और अनुभाग कांडक घात भी होता है। अनुभाग तो अप्रशस्त समय होता है। स्थिति के असंख्यात भाग यानी पल्ल का असंख्यात वे भाग प्रमाण स्थिति बाकी है कर्मों की आयु छोड़कर अन्य की आयु तो अंतर्मूर्त शेष है। अब वहाँ वेदनीय भी है गोत्र भी है और नाम कर्म भी नाम वेदनीय नाम और गोत्र तो वेदनीय नाम और गोत्र का पल्ल के असंख्यात वे भाग प्रमाण उसकी स्थिति बाकी है। उसमें से असंख्यात बहुभाग एक समय में नष्ट हुआ असंख्यातवा भाग शेष रहा। दूसरे समय में उसका असंख्यात बहुभाग नष्ट होकर असंख्यातवा भाग इस तरह से चार समयों में असंख्यात बहुभाग नष्ट हो जाते। तो देखे स्थिति के असंख्यात बहुभाग का स्थिति कितनी बाकी थी पल्ल का असंख्यातवा भाग उसका असंख्यात बहुभाग का और अनुभाग के अनंत बहुभाग का घात कर स्थित रहते हैं उसका नाम दंड समुद्घात है। वो समुद्घात शब्द है हर जगह वो द के नीचे ध लगाया ध नहीं घ चाहिए समुद्घात या बाजू में लिखना द आधा और घ घात। दूसरे समय में क्या होगा दूसरे समय का उसका नाम क्या है
कपाट
जो गोलाकार फैले हुए हैं तो क्या होता है ऐसे यहाँ मुंह है तो ऐसे आड़े फैलेंगे कहाँ तक वात वाले छोड़कर लोक के अंत तक तो पूर्व की तरफ मुंह है तो दक्षिणोत्तर फैलेंगे उत्तर की तरफ मुंह वाले पूर्व पश्चिम फैलेंगे। यही कह रहे दूसरे समय में पूर्व और पश्चिम की ओर से वात वाले के सिवा पूरे लोकाकाश को अपने देह के विस्तार द्वारा व्याप्त कर आगे पीछे का विस्तार इतना ही रहता है जो गोलाकार बनाया था यानी सामने जिसको एंटीरियर पोस्टीरियर हम कहेंगे ऐसा नहीं बढ़ता है पहले आड़ा फैलेगा लोक तक जाएंगे। हाँ शेष स्थिति और अनुभाग का यानी अभी जो बची हुई स्थिति है ना पहले समय में घात किया अभी जो बची उसका क्रम से असंख्यात बहुभाग यानी स्थिति का असंख्यात बहुभाग और अनुभाग का अनंत बहुभाग का घात कर जो अवस्थान होता है अवस्थान ने वहां जैसा जो फैले रहते हैं वह कपाट समुद्घात है। हर जरे वो घात बराबर लिखना धात के बदले घात। तीसरे समय में वात वलय के सिवा पूरे लोकाकाश को क्योंकि पहले तो आड़े फैले थे अभी आगे पीछे भी फैलेंगे अपने जीव प्रदेशों द्वारा व्याप्त कर शेष स्थिति और अनुभाग का क्रम से असंख्यात बहुभाग फिर दोबारा जितना शेष है उसका असंख्यात बहुभाग और अनुभाग का अनंत बहुभाग घात कर जो अवस्थान होता है वह प्रतर समुद्घात है। चौथे समय में सब लोकाकाश को व्याप्त करें अभी वात वलयों में भी फैलते हैं प्रदेश शेष स्थिति और अनुभाग का क्रम से असंख्यात बहुभाग और अनंत बहुभाग का घात कर जो अवस्थान होता है यह लोक पूर्ण समुद्घात है। अब यहाँ शेष स्थिति का प्रमाण अंतर्मूर्त है जो कि आयु के प्रमाण से संख्यात गुना। क्या कहना चाहते हैं? शुरुआत में चार समय पहले पल्ल के असंख्यात वे भाग प्रमाण था और जब लोकपुरण के बाद यानी लोकपुरण के समय में जो बहुभाग का घात किया अब आयु शेष कितनी अंतर्मूर्त और यहाँ की शेष कर्मों की स्थिति कितनी होगी संख्यात अंतर्मूर्त अंतर्मूर्त ही होगी परंतु आयु के अंतर्मूर्त से संख्यात गुणा वाला अंतर्मूर्त यहाँ रहेगा क्योंकि इसके बाद भी अंतर्मूर्त अंतर्मूर्त वाले स्थिति कांडक होने वाले है। अभी स्थिति कांडक कितने एक एक समय में और वो असंख्यात बहुभाग वाले हुए थे। अब आगे बढ़ते फिर पढ़ती हूँ इसको। अब यहाँ शेष स्थिति का प्रमाण अंतर्मूर्त है जो कि आयु के प्रमाण से संख्यात गुणा है पहले कितना था, असंख्यात गुणा था, है ना। यहां से लेकर आगे सब स्थिति कांडक और अनुभाग कांडकों को अंतर्मूर्त के द्वारा घातता है। केवल चार समयों में, एक एक समय में उसने स्थिति कांडक और अनुभाग कांडक किया था। इसके बाद जैसे हमेशा पहले होता था, एक स्थिति कांडक घात होने के लिए अंतर्मूर्त लगता है और एक अनुभाग कांडक होने के लिए भी अंतर्मूर्त लगता है। यहाँ एक एक समय में हुआ, उसके पश्चात अंतर्मूर्त में होगा। स्थिति कांडक का आयाम अंतर्मूर्त है। आयाम का अर्थ होता है, देखो एक है स्थिति कांडक का काल, वो भी अंतर्मूर्त, और वो कितने निषेकों को घातेंगे तो कहेंगे स्थिति कांडक का आयाम, वो भी अंतर्मूर्त है। क्योंकि आयु से संख्यात गुणा बड़ा है ना, तो उसमें से कट डाउन करते करते जब चौथे में एंटर हो गए तब आयु के समान होना चाहिए। और अनुभाग कांडक का प्रमाण शेष अनुभाग के अनंत भूभाग है। इस क्रम से अंतर्मूर्त काल जाने पर योग निरोध करता है। फिर से ये तो समुद्घात की क्रिया बताई, और समुद्घात की क्रिया संपन्न होने के पश्चात अंतर्मूर्त के बाद योग का निरोध होता है, तब वो तीसरा ध्यान होता है, सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाद। शंका, योग निरोध किसे कहते हैं? समाधान, योगों के विनाश की योग निरोध संज्ञा है। ना ना ना, उसके अंतर्मूर्त पश्चात, अंतर्मूर्त बीच में भी समय जाता है, फिर योग निरोध होता है। अभी बताए ना, हाँ, अंतर्मूर्त काल जाने पर योग निरोध करता है। हाँ, उतरते समय, एक एक समय में नहीं होगा, उतरते समय के चार समय जो है वो अंतर्मूर्त में गर्भित है, यानी चार समय ने वहां देखो, लोकपुरण में एक स्थिति कांडक घात हुआ, उसके बाद प्रतर है, प्रतर है, कपाट है, दंड है, मूल शरीर में आया है, वो सब मिलकर एक जब अंतर्मूर्त होगा तब वो स्थिति कांडक पूरा हो जाएगा। उतरते समय में एक एक समय में नहीं होता है, एक एक समय में होता है, विशेषता है उसकी। नहीं, नीचे आते समय शुरू हो गया, कांडक घात शुरू हो गया, पर वो कांडक घात, हाँ, क्योंकि उसके एक फाली, दो फाली, तीन फाली, इस तरह करे से अंतर्मूर्त में उसका कांडघात पूरा होगा। देखो, योगों के विनाश की योग निरोध संज्ञा यथा, नीचे से तीसरी लाइन पढ़ रही, यहाँ अंतर्मूर्त काल बिताकर बादर का योग के द्वारा। देखो, जैसे योग भी जो है, योग स्थान जो पहले जो हमने कर्मों की रचना देखी थी ना, पहले कर्मों के भी कैसी रचना होती है, अनुभाग की रचना आपको याद है, एक परमाणु को वर्ग कहते हैं और समान अनुभाग वाले वर्गों के समूह को वर्गणा कहते हैं, अनंत वर्गणाओं के समूह को स्पर्धक कहते हैं, उसमें एक एक से बढ़ते हुए वर्गणाएं होती है। अब योग स्थान में भी ऐसा ही है, परंतु योग स्थान में सभी संख्या असंख्यात में होती है, कर्मों में अनंत में होती थी। अब एक योग स्थान कैसा गिनना, कर्मों में तो अनंत अनंत परमाणु है और उसकी रचना बताते हैं अनुभाग में। अब योग में क्या विशेषता है, जीव के प्रदेश तो लिमिट यानी फिक्स है, उसमें कोई बढ़ोतरी वगैरह होने वाली नहीं है, तो जीव के कितने प्रदेश है मालूम है, असंख्यात, कितना, एक लोक जितना, जिसको कहेंगे लोक प्रमाण। अभी उन प्रदेशों में जिनमें जिनमें समान योग है, कौन सा मिनिमम, उसको एक लाइन में लिखेंगे, वो हो गया उसको जघन्य वर्ग, जघन्य वर्गणा, वो असंख्यात होती है। फिर दूसरी वर्गणा में योग का एक अविभाग प्रतिच्छेद बढ़ता है और प्रदेश थोड़े कम हो गए, इस तरह से पूरी वो योग स्थान की रचना होती है। उसमें भी वर्ग वर्गणा स्पर्धक होते हैं, एक स्पर्धक, दूसरा स्पर्धक, तीसरे, वो असंख्यात में होते हैं। अब स्पर्धकों में जो मिनिमम भी अनुभाग है उससे भी घटकर, यानी अभी तक संसार अवस्था में उससे मिनिमम कभी अनुभाग नहीं हुआ था योगों का, अब उसको कहेंगे चलो वो सूक्ष्म किया जाता है। सूक्ष्म किया है ना, वो योग अत्यंत सूक्ष्म हो जाता है, कौन सा, वो सूक्ष्म निगोद लब्धि पर्याप्त का उपपाद योग से भी हीन ऐसा योग हो जाता है, उसको कहेंगे सूक्ष्म किया। अभी इसको पढ़ेंगे। देखो, यानी उसको भी वो बादर कृष्टि सूक्ष्म कृष्टि ऐसा उसमें भी आते, पहले बादर कृष्टि की सूक्ष्म कृष्टि की। यहाँ अंतर्मूर्त काल बिताकर बादर का योग के द्वारा, यानी वो कौन से योग में स्थित है, तो योग का योग में है। सभी बादर था, पहले मनोयोग को सूक्ष्म करेंगे, फिर वचन योग को सूक्ष्म, श्वासोश्वासो सूक्ष्म, फिर कायोग भी सूक्ष्म होगा। इस तरह से बादर कायोग के द्वारा बादर मनोयोग का निरोध करता है, फिर अंतर्मूर्त में बादर कायोग के द्वारा बादर वचन योग का निरोध करता है, फिर अंतर्मूर्त में बादर कायोग के द्वारा बादर उच्छ्वास निश्वास का निरोध करता है, फिर अंतर्मूर्त में बादर कायोग के द्वारा उसी बादर कायोग का निरोध करता है, यानी उसमें रहते हुए ही उसको निरोध होता है, फिर अंतर्मूर्त में सूक्ष्म कायोग के द्वारा सूक्ष्म मनोयोग का निरोध करता है, यानी सूक्ष्म कायोग में रहते हुए मनोयोग नष्ट हो जाता है, फिर अंतर्मूर्त में सूक्ष्म कायोग के द्वारा सूक्ष्म वचन योग का निरोध करता है, फिर अंतर्मूर्त में सूक्ष्म कायोग के द्वारा सूक्ष्म उच्छ्वास निश्वास का निरोध करता है, फिर अंतर्मूर्त काल जाने पर सूक्ष्म कायोग के द्वारा सूक्ष्म कायोग का निरोध करता हुआ इन कर्णों को करता है। इन कर्णों को करता है ना, अभी जो बताने वाले हैं कर्ण क्या क्या करता है, योग के बारे में क्या करता है उसकी बात है। हाँ, फिर भी वो सब मिलकर अभी कायोग में ही स्थित है वो। हाँ, क्योंकि ये योग का काल है, उसको एक सिर तो नहीं करेंगे, यानी कितने छोटे अंतर्मूर्त में सब कार्य संपन्न हो रहा है। हाँ, पर वो उसके अंदर इतने अंतर्मूर्त है क्योंकि अंतर्मूर्त रुक कर योग का निरोध होता है, और योग के निरोध में एक एक योग का बादर से सूक्ष्म सूक्ष्म नष्ट करना वो सब होता है। और उसमें भी क्या क्या कार्य होता है वो अभी बता रहे हैं। इन कर्णों को करता है ना, ये प्रोसेसेस वहां संपन्न होते हैं। प्रथम समय में देखो, अभी कर्मों की बात आपको याद होगी तो शपक श्रेणी में क्या क्या था, स्पर्धकों को पहले अपूर्व स्पर्धक बनाया था, अपूर्व स्पर्धकों को बादर कृष्टि बनाई थी और बादर कृष्टि को सूक्ष्म कृष्टि बनाई थी। अभी योगों में ऐसा ही लगाएंगे। देखो, प्रथम समय में पूर्व स्पर्धकों के नीचे अपूर्व स्पर्धक करता है। नीचे का अर्थ क्या है, कम अनुभव वाले प्रदेश तो वही के वही है, उसमें से अनेक प्रदेशों में योग इतना कम हो जाता है उसको अपूर्व स्पर्धक नाम देंगे। ऐसा करते हुए प्रथम वर्गणा के अविभाग छेदों के असंख्यात वे भाग का अपकर्षण करता है। देखो, योगों में अविभाग प्रतिच्छेद असंख्यात में ही होंगे, कभी अनंत में नहीं गिनेंगे, तो वहां जितना अनुभाग है ना, किसका, योगों का, योगों की जो शक्ति है वो अविभाग प्रतिच्छेदों में नापते हम। तो प्रथम वर्गणा के अविभाग प्रतिच्छेद, यानी प्रथम वर्गणा में एक एक प्रदेश में जो योग है, प्रथम वर्गणा यानी मिनिमम वाला, वो पहली वर्गणा सभी योग स्थानों के लिए होगी। हमने देखा था ना जघन्य योग स्थान जो है, अभी योग स्थानों की चर्चा की ना, जघन्य से उत्कृष्ट तक हमने असंख्यात लोक प्रमाण अलग अलग योग स्थान देखे थे। तो हरेक के जो पहला जो स्पर्धक है, तो पहली वर्गणा फिक्स है, उसके ऊपर 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 और स्पर्धकों की रचना बताई थी पहले हमने, याद है कि भूल गए, वो बारहवीं पुस्तक में उसके पहले आई थी ना वो, तो वो वेदना 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 में आया था शायद, या वेदना भाव में आया था, वेदना भाव विधान में आया था। तो वहां कर्मों की बात आई थी, कर्मों के वहां स्पर्धक बताए थे, यहाँ योगों के स्पर्धक बताना है फिर से। यानी पहले समय में, यानी पहली बार, पहले महीने अंतर्मूर्ति लगता तो है, उसमें अपूर्व स्पर्धक बनाए, तो उसमें क्या किया उसने, ऐसा करते हुए ऊपर से छठी लाइन, प्रथम वर्गणा के अविभाग प्रतिच्छेदों के असंख्यात वे भाग का अपकर्षण करता है, और जीव प्रदेशों के असंख्यात वे चाहिए, असंख्यात में नहीं, असंख्यात वे भाग का अपकर्षण करता है। देखो, अभी प्रदेशों का क्या अपकर्षण करना है, परंतु ये जो रचना बतानी है तो कैसा कहेंगे हम, तो कुछ प्रदेशों में अनुभाग कम होना उसी को कहेंगे प्रदेशों का अपकर्षण करता है, कर्मों में आकर्षण करता है तो हमको समझते हैं कि वो तो उदय के सन्मुख आए। अब यहाँ प्रदेश तो कुछ जीव को छोड़कर जाने वाले नहीं, जीव के प्रदेश तो हमेशा जीव के साथ रहेंगे। परंतु अभी हम अगर हम गुणस्थानों सॉरी योग स्थानों की इसे अगर रचना बताते हैं, यानी योग स्थान में क्या ये सब स्पर्धक रूप से थे, वर्गना और स्पर्धक रूप से। अभी कुछ जीव प्रदेशों में इससे भी असंख्यात वे भाग प्रमाण ऐसा अनुभाग हो जाता है और उसके नीचे ये अपूर्व स्पर्धक बनेंगे। उसमें भी वर्ग वर्गना स्पर्धक सब समझना, समझ में आती है बात, क्योंकि प्रदेश तो फिक्स है तो अनेक प्रदेशों में अनुभाग कम होकर वो नीचे ऐसी रचना बताएंगे, उसको कहेंगे उसका अपकर्षण करके।
प्रति समय अपूर्व स्पर्धक बनते जाएंगे,
प्रति समय बनेंगे, परंतु वो पूरे ऊपर के पूर्व स्पर्धक सभी अपूर्व बनने के लिए अंतर्मूर्त लगेगा, पर प्रत्येक समय में नए नए अपूर्व बनेंगे। ये सब हमने डिटेल में जाना है, लब्धिसार में भी पढ़ा है इसको। अभी क्षपक श्रेणी में भी थी ना आप, वहां पर भी लिया था। हाँ देखो क्या, देखो जीव प्रदेशों के असंख्यात भाग का अपकर्षण होता है। इस प्रकार अंतर्मूर्त काल तक लिखा है ना, अपूर्व स्पर्धक करता है, उसका अर्थ क्या है, ये पूर्व स्पर्धकों में से अभी सब अपूर्व स्पर्धक बने, यानी अनुभाग इतना घटा, ये अपूर्व स्पर्धक प्रति समय पहले समय में जितने किए गए उनसे अगले ने नेक्स्ट द्वितीय आदि समयों में असंख्यात गुणहीन श्रेणी रूप से किया जाता है। यहाँ गुण श्रेणी की बात नहीं है, पहले समय में कितने नंबर ऑफ अपूर्व स्पर्धक बने, उसके नीचे दूसरे समय में बने, पर वो तो अभी कम बने, तीसरे समय में कम, परंतु उससे भी कम अनुभाग वाले बने, इस तरह से। और पहले समय में जितने जीव प्रदेशों का अपकर्षण कर किए उनसे अगले समयों में ओ डालना, संख्यात गुणे ने असंख्यात गुणे, प्राकृत में है देखो नीचे से पैराग्राफ के नीचे से तीसरी चौथी लाइन है, असंख्य जो गुणाए सेड़िए, देखो क्या कहते हैं, ये जो नए नए स्पर्धक बनेंगे नीचे वो असंख्यात वे भाग प्रमाण बनेंगे, नंबर ऑफ स्पर्धक, और उसमें जो जीव के प्रदेश उसमें आएंगे वो असंख्यात गुणे बढ़ जाएंगे, क्योंकि वो पूर्व के सारे जो ये पूर्व स्पर्धक थे ये पहले समय में इतने बने, दूसरे समय में नीचे तो बने ही बने, इसके बाजू में भी बने, तीसरे समय में नीचे तो बने ही बने, इसके बाजू में और बने, यानी सारे पूर्व स्पर्धक अपूर्व रूप से बन जाएंगे, यानी जीव के प्रदेश असंख्यात गुणे उसका अपकर्षण, और नंबर ऑफ अपूर्व स्पर्धक असंख्यात वे भाग प्रमाण बनते चले जाएंगे। ये संख्यात का असंख्यात किया ना सबने, असंख्यात गुणे श्रेणी रूप से जीव प्रदेशों का अपकर्षण कर किए जाते, इस प्रकार किए गए सब अपूर्व स्पर्धक जगत श्रेणी के असंख्यात वे भाग प्रमाण, जगत श्रेणी के प्रथम वर्गमूल के असंख्यात वे भाग प्रमाण और पूर्व स्पर्धकों के भी असंख्यात वे भाग प्रमाण होते हैं। इस प्रकार अपूर्व स्पर्धक करने की विधि का कथन समाप्त हुआ। अब यहाँ तो बहुत शॉर्ट में बताया है, वैसे तो आप लब्धिसार में फिर दोबारा भी पढ़ सकते हैं। तो पहले में पहले उन्हें पूर्व स्पर्धक कौन से अपूर्व स्पर्धक बने, इसके बाद अंतर्मूर्त काल तक कृष्टियों को करता है, अभी तक वर्गणा के रूप में थे इसीलिए उसको स्पर्धक संज्ञा थी, भले अपूर्व इसलिए कि उसके पूर्व संसार अवस्था में जितना अनुभाग था, इवन जो लब्ध्य पर्याप्त का सूक्ष्म जो जघन्य में जघन्य योग वो उपपाद योग होता है सूक्ष्म निगोद पर्याप्त का, उससे भी असंख्यात विभाग वाले ऐसे जो अनुभाग बने थे, अब उसमें उसके भी नीचे कृष्टियों को करेगा। अब एक कृष्टि से दूसरी कृष्टि में असंख्यात गुणा का डिफरेंस है, वर्गुणा में एक एक का डिफरेंस था, एक अभिभाग प्रतिच्छेद का, इसमें असंख्यात गुणा का होगा, कर्मों में अनंत गुणा का था, कर्मों की कृष्टियों में है ना, तो कृष्टियों को करता है। और ऐसा करते हुए अपूर्व स्पर्धकों की प्रथम वर्गणा के यानी जो सभी टोटल नंबर अपूर्व स्पर्धक बने हैं उनके सबसे नीचे का जो अपूर्व स्पर्धक है उसकी जो पहली वर्गणा है अविभाग प्रतिच्छेदों के असंख्यात वे भाग का अपकर्षण करता है, यानी उसके भी असंख्यात वे भाग प्रमाण यह नया अनुभाग होगा, और जीव प्रदेशों के असंख्यात वे भाग का अपकर्षण करता है, यानी जो प्रदेश अधिक अनुयोग अधिक योग वाले थे वे ही प्रदेश अभी कृष्टि वाले कृष्टि के समान उनका योग हो जाएगा। इस प्रकार यहाँ अंतर्मूर्त काल तक कृष्टियां करता है। ये कृष्टियां प्रति समय, जैसे हमने स्पर्धक दिखाए थे अपूर्व स्पर्धक, नीचे नीचे होते चले जाते हैं, पहले समय में जितने किए उसके असंख्यात वे भाग प्रमाण, दूसरे समय में उससे असंख्यात वे, तीसरे समय में, तो ये कृष्टियां प्रति समय पहले समय में जितनी की गई उनसे आगे द्वितीय आदि समयों में असंख्यात गुणी हीन श्रेणी रूप से की जाती है। और पहले समय में जितने जीव प्रदेशों का अपकर्षण कर की गई उनसे अगले समयों में असंख्यात गुणी श्रेणी रूप से जीव प्रदेशों का अपकर्षण कर की जाती है। क्या की जाती है? कृष्टियां। समझ में थे? यानी असंख्यात गुणा प्रदेश हीन अनुभाग रूप से होते चले जाते हैं। कृष्टि गुणकार पल्लोपम के असंख्यात वे भाग प्रमाण, यानी कृष्टि गुणकार रहते थे, एक कृष्टि से दूसरी कृष्टि पल्ले के असंख्यात वे भाग गुणा है। सब कृष्टिया जगत श्रेणी के असंख्यात वे भाग प्रमाण, नंबर ऑफ टोटल कृष्टि जगत श्रेणी के असंख्यात वे भाग, और अपूर्व स्पर्धकों के भी असंख्यात वे भाग प्रमाण है, यानी उनकी संख्या कितनी, अपूर्व स्पर्धकों के असंख्यात वे भाग, क्योंकि अभी नीचे नीचे उनपे प्रदेश अधिक बढ़ते हैं और उनकी संख्या कम होती है। कृष्टिकरण क्रिया यानी कृष्टि करने का कार्य समाप्त हो जाने पर, यानी अभी सभी अपूर्व स्पर्धक कृष्टि रूप से परिणमित हो गए, फिर उसके अनंतर समय में पूर्व स्पर्धकों का और अपूर्व स्पर्धकों का नाश करता है। अच्छा, यानी वो पहले पूर्व स्पर्धक अपूर्व स्पर्धक भी थे और कृष्टि करने का कार्य भी चल रहा था, बाय द टाइम कृष्टिया होती हुए भी अपूर्व स्पर्धक पूर्व स्पर्धक नष्ट हो जाते। अंतर्मूर्त काल तक कृष्टिगत योग वाला होता है, यानी अभी कैसा योग है उसका, कृष्टि सम कृष्टि वाला योग है, तथा सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाती ध्यान को ध्याता है। ध्यान को ध्याता है, वो तो वही सूक्ष्म क्रिया होना है योग की सूक्ष्म, यही उसका ध्यान है। अंतिम समय में कृष्टियों के असंख्यात बहुभाग का नाश करता है। पहले कृष्टि वाला हो जाता है, फिर कृष्टि का भी नाश हो जाता है। शंका, इस योग निरोध के काल में केवली जिन सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाती ध्यान को ध्याते हैं यह जो कथन किया है वह नहीं बनता, ये शंकाकार की शंका है, क्योंकि केवली जिन अशेष द्रव्य पर्यायों को विशेष करते विषय करते हैं, यानी संपूर्ण द्रव्य पर्याय उनके ज्ञान का ज्ञेय है, तो किसी से उपयोग हटाना किसी में लगाना ये बात उनके नहीं होती है, अपने सब काल में एक रूप रहते हैं, यानी हीनाधिकता नहीं होती उसके अंदर, और इंद्रिय ज्ञान से रहित है, अतएव यानी इसलिए उनका एक वस्तु में मन का निरोध करना उपलब्ध नहीं होता, यानी उनको ध्यान शब्द से उनको आपत्ति है, क्योंकि ध्यान में क्या है, एकाग्र चिंता निरोधो ध्यानम, तो अन्य विषयों से हटाकर एक विषय में लगाना, तो कहते ऐसा तो उनके होता नहीं है, और मन का निरोध किए बिना ध्यान का होना संभव नहीं है, यानी एक किसी वस्तु में लगाना है तो ये तो होगा नहीं उनको, क्योंकि अन्यत्र वैसा देखा नहीं जाता। समाधान, यह कोई दोष नहीं है, क्योंकि प्रकृत में ने अभी हमारा जो विषय चल रहा है किसका, केवली का, केवली में कौन सा ध्यान है उसका विषय चल रहा है, तो इसलिए प्रकृत में एक वस्तु में चिंता का निरोध करना ध्यान है, यदि ऐसा ग्रहण किया जाता है तो उक्त दोष आता है। केवली के तो एकाग्र चिंता निरोध वाला जो परिभाषा है ध्यान की, वो केवली में लगाते ही नहीं है, परंतु यहाँ ऐसा ग्रहण नहीं करते, यहाँ उसके लिए उनको ध्यान नहीं कहा है। फिर शंकाकार पूछते, तो यहाँ किस रूप में ग्रहण करते हैं, पहले एक बार बता चुके थे, शंका करके वो तो छूट गया होगा, इसलिए दोबारा शंका उठाई, इसलिए कि ये हमें ख्याल में आ जावे। समाधान, यहाँ उपचार से योग का अर्थ चिंता है, योग का निरोध, वहां चिंता निरोध था, यहाँ योग निरोध है। यह उपचार से योग को ही चिंता कहा, उसका एकाग्र रूप से निरोध अर्थात विनाश जिस ध्यान में किया जाता है वह ध्यान ऐसा यहाँ ग्रहण करना चाहिए, इसलिए यहाँ पूर्वोक्त दोष संभव नहीं है। इस विषय में गाथा है। अभी जो देखो, हाँ आपका प्रश्न है, आचार्य स्वयं अपने मन में स्वयं उठा रहे प्रश्न, स्वयं उत्तर दे रहे, वो तो ये टीका लिख रहे, टीका यानी स्पष्टीकरण, किसका किसका, षटखंडागम का सूत्र में जो बताया था उसका। अभी सूत्र कौन सा आके गया है लास्ट में, जिसके लिए इतनी सब परिवार ये सब चल रही है, ध्यान की बात आई थी ना, ये तपक कर्म चल रहा अपना, तप कर्म में स्वाध्याय तप की बात चली और ध्यान, अंतिम जो ध्यान नाम का तप है ना उसकी बात चल रही है, यानी आचार्य उसका यहाँ तप के बारे में, ध्यान के बारे में विस्तार से विवेचन कर रहे हैं। अब इसमें ध्यान कहने से उसकी परिभाषा एकाग्र चिंता निरोध ध्यानम है, परंतु सब लोगों को ख्याल में आवे, इसलिए स्वयं शंका करके मुंह में प्रश्न किसने, आचार्य ने ही रखे ना, जैसे हमारे टोडरमल जी साहब की यही विशेषता थी ना, कि ऐसा प्रश्न करता है कि या तू यदि ऐसा कहता है तो, यह सामने वाला द्रव्यान योग का प्रतिपक्षी ऐसा कहता है, चरणान योग का प्रतिपक्षी कहता है, उसके लिए उत्तर देते हैं। इस तरह से यहाँ स्वयं प्रश्न उठाकर, क्योंकि ये जो डिफरेंस ख्याल में आना चाहिए, हाँ वो तप कर्म की बात है ना यहाँ पर, बहिरंग में से ध्यान नाम के तप की चर्चा चल रही है यहाँ पर। हाँ अभ्यंतर ने पहले बाह्य तपों की, वो अनेशन वगैरह की बात की थी, हाँ ये अभ्यंतर, पहले बाह्य तप किया था फिर अंतरंग तप की बात है। छब्बीस नंबर के जो सूत्र था ना उसकी सब चर्चा थी, पेज नंबर 54 का। अभी हम यहाँ पढ़ रहे थे, आपका प्रश्न ये क्यों कौन उठाता है, तो स्वयं आचार्य इस प्रश्न को उठाते इसलिए है कि ये डिफरेंस केवली का ध्यान किस तरह का ध्यान है, तो यहाँ जो एकाग्र चिंता निरोध कहते हैं, यहाँ एकाग्र यहाँ तो योग का निरोध, उसी को ध्यान कहेंगे। देखो फिर से पेज नंबर 86 नीचे से वो समाधान ना, यहाँ उपचार से योग का अर्थ चिंता है, उसका एकाग्र रूप से निरोध अर्थात विनाश जिस ध्यान में किया जाता है वह ध्यान ऐसा यहाँ ग्रहण करना चाहिए, इसलिए यहाँ पूर्वोक्त दोष संभव नहीं है। जो छद्मस्थ के ध्यान था उसका फल ही केवल ज्ञान है, परंतु यहाँ पर भी दूसरी भी अपेक्षा लगाते कि यहाँ भी असंख्यात गुणा निर्जरा चल रही है, इसलिए भी उपचार से पूरे में उनको ध्यान कहने में आता है। ये सूक्ष्म क्रिया वाला जो ध्यान है वो तेरवे के अंत में हो जाता है, यहाँ योग का निरोध ही उनके लिए ध्यान बताया है।
योग तो शरीर नाम कर्म के उदय से होता है।
हाँ योग शरीर नाम कर्म के उदय से होता है।
यहाँ पे जो पुष्टि जो बताई वो शरीर नाम कर्म का अनुभाग है, उसकी अपेक्षा बताइए।
योगों का अपना अनुभाग, नाम कर्म का अनुभाग कर्म में बताया, और ये जीव का है ना, भाव योग जीव में होता है, कर्म में नहीं होता है। योग तो जीव के पर्याय में है, है ना, और जीव के प्रदेशों में पाया जाता है वो। देखो इसलिए इसको अभी ध्यान कहा, इसलिए पूर्वोक्त दोष संभव नहीं। इस विषय में गाथाएं 74। तोयमि वर्णाली आए तत्ताय सभायणो दरत्थं वा परिहादिकमेण जहतः जोग जलम झान जलनेन। वो कमेण है ना, पहले भी उस दिन कम शब्द आया था, क्रम के लिए कम शब्द है। जिस प्रकार नाली द्वारा जल का क्रमशः अभाव होता है, या तपे हुए लोह के पात्र में स्थित जल का क्रमशः अभाव होता है, नहीं समझे? वो तवा गर्म है, उसके अंदर पानी रख दो तो क्या तपने से वो तो भी निकल जाएगा वो। उसी प्रकार ध्यान रूपी अग्नि के द्वारा योग रूपी जल का क्रमशः नाश होता है, यानी योग नष्ट हो जाता है। 75 नंबर। तो ये मिवल नाली आए, यानी नाली जो हम कोई चर निकालते हैं उसके द्वारा बह जाता है नल, इस तरह से लेना उसको। कोई बड़ा जल का कोई जलाशय है तो नाली के द्वारा उसको बाहर निकालते हैं ना, इस तरह से। अब 75 नंबर की गाथा, 87 पेज। जहसौ अशरीर गयम मन्तेन विषम निरुम्भये डंके तत्तो पुनो वणिच्छति पहाण झरमंत जोएन। जिस प्रकार मंत्र के द्वारा सब शरीर में भिदे हुए विष का डंक के स्थान में निरोध करते हैं, क्या कहा? ये जो डंक सांप या कोई अन्य का डंक होता है तो उसका विष पूरे शरीर में फैलते हैं, तो मंत्रों के द्वारा उसको वो फैला हुआ विष वो जो डंक के स्थान तक ऐसा लाया जाता है, वहां उसका निरोध किया जाता है, और प्रधान क्षरण करने वाले मंत्र के बल से उसे पुनः निकालते। क्या कहा? ये पहले मंत्र से क्या फैला हुआ विष समेट कर वो डंक के स्थान में लाया, और जो प्रधान क्षरण करने वाले मंत्र के द्वारा उसको बाहर निकाल दिया। अब ये तो दृष्टांत हुआ, 76 पढ़ेंगे भी। तह बाद रतन विषयम जोग विसमझान मंत बल जुत्तो अनुभावम मिनिरुंभदी अवणे दितदो विजिन वेज्जो। उसी प्रकार ध्यान रूपी मंत्र के बल से युक्त हुआ, केवली कोई ध्यान मंत्र नहीं बता रहे, वो तो ध्यान में, वो तो अपने तो ध्यान में लीन है। ध्यान रूपी मंत्र के बल से युक्त हुआ यह संयोग केवली जिन रूपी वैद्य, ये सब दृष्टांत दिया उनको। बादर शरीर विषयक योग विष को पहले रोकता है, बादर योग को, ये कौन सा योग रूपी विष है? शरीर में फैला हुआ योग रूपी विष अपनी भाषा में बादर योग का निरोध करता है। बराबर, शरीर विषयक योग विष को, विषय को नहीं विष को, उसमें क्या लिखा है? विष को। योग विषम लिखा है ना गाथा में, शरीर विषयक बराबर है, पर योग के विषय विष को लिखा है वहां पर, उनके यहाँ विषय लिखा है, योग विष है। हमने जो ऊपर मंत्र की जो दृष्टांत दिया था उसमें विष की बात है, यानी सब शरीर में भिदे हुए विष का डंक लिया था, तो यहाँ क्या लिखा है? बादर शरीर विषय योग विष, पहले बादर योग था उसको पहले रोकता है, यानी सूक्ष्म बना देता है और फिर उसका नाश कर देता है, और इसके बाद उसे निकाल फेंकता है, यानी ध्यान चल ही रहा है, पहले वो बादर से सूक्ष्म हुआ, सूक्ष्म से नष्ट हो गया। अब तीसरे इस प्रकार तीसरे शुक्ल ध्यान का कथन समाप्त हुआ। तीसरे शुक्ल ध्यान में क्या हुआ था? योग का निरोध। अब चौथे शुक्ल ध्यान का कथन करते हैं, यथा जिसमें क्रिया अर्थात योग सम्यक प्रकार से उच्छिन्न हो गया है, उच्छिन्न ने नष्ट हो गया। अभी नष्ट हुआ तो फिर दोबारा आएगा कि नहीं आएगा?
नहीं।
वह समुच्छिन्न क्रिया कहलाता है, यानी उसने हो कर दिया है। और समुच्छिन्न क्रिया होकर जो अप्रतिपाती है वह समुच्छिन्न क्रिया अप्रतिपाती ध्यान है। समुच्छिन्न क्रिया विशेषण बनाए, जिसने क्रिया ने योग को नष्ट कर दिया वो समुच्छिन्न क्रिया। अब उससे वो पीछे लौटेगा नहीं, वो प्रति यानी उसका प्रतिघात नहीं होगा, अप्रतिपाती है वो। यह श्रुत ज्ञान से रहित होने के कारण अवितर्क है। अभी ये केवली है ना, तो पहले ही बता चुके उनके ध्यान होते वो अवितर्क होते हैं। जीव प्रदेशों के परिस्पंद का अभाव होने से विचार है, यानी अभी पलटने की कोई बात ही नहीं है। या अर्थ व्यंजन और योग की संक्रांति के अभाव होने से अविचार है, यानी इसकी कंपैरिजन पहले दो शुक्ल ध्यानों के साथ बताते हैं। वहाँ वितर्क भी है और विचार या अविचार होते हैं, यहाँ अवितर्क है और अविचार है। 77 नंबर। ना ना ना, अरे वितर्क श्रुत को कहते हैं, केवली को वितर्क कैसा होगा? ना ना ना, ऐसा उनका सूक्ष्म क्रिया तो अंत में होता है, योग के निरोध कर में उनके ध्यान तो है ही नहीं है। हाँ, ध्यान जो कहने में आता है वो तो असंख्यात गुणा निर्जरा चल रहे, बस इतना ही। हाँ, क्योंकि वो त्रिकाल ध्यान का फल केवल ज्ञान चल रहा है बस। देखो क्या कहते हैं, वितर्क इसलिए नहीं कहते कि श्रुत को ही वितर्क कहा है, अब ये तो केवल ज्ञानी है। 77 नंबर। अविदक्कम विचारम अनियट्टी अकिरियम च सेलेसिम झाणम निरुद्ध जोगम अपच्छिमम उत्तमम सुखम। अंतिम अपश्चिमे ने वो, अभी इसके बाद कुछ नहीं है ना, लास्ट वाला अंतिम उत्तम शुक्ल ध्यान उत्तमम सुक्कम वितर्क रहित है अविदक्कम, विचार रहित है अविचारम, अनियट्टी अनिवृत्ति है यानी अभी वापस उल्टा जाएगा नहीं, और क्रिया रहित है अक्रियम च, और शैलेशी मिलता ना, शैलेशी अवस्था को प्राप्त है, शील के ईश हो गए हैं, सभी शील गुण प्रकट हो गए हैं, इसलिए कहते हैं शैलेशी अवस्था को प्राप्त होता है यानी प्राप्त है, और योग रहित है यानी वो 14वें गुण स्थान में बताया नहीं है, यानी क्रिया सूक्ष्म कर दी है ऐसा, सूक्ष्म क्रिया सॉरी सूक्ष्म क्रिया नहीं, समुच्छिन्न क्रिया जिन्होंने वो नष्ट कर दिया, योग को नष्ट किया है, इसलिए उसका नाम है समुच्छिन्न क्रिया, और इससे भी वो अप्रतिपाती है, इसलिए समुच्छिन्न क्रिया प्रतिपाती। शंका, यहाँ ध्यान संज्ञा किस कारण से दी गई है? अब यहाँ इसलिए पूछ रहे हैं, पहले तो एकाग्र चिंता निरोध, चिंता के निरोध को ध्यान कहा, अब ये सूक्ष्म क्रिया वाले के लिए तो योग का निरोध उसको ध्यान किया, अब यहाँ योग भी नहीं है तो अभी क्यों ध्यान कहते, ये उनका प्रश्न है। समाधान, एकाग्र रूप से जीव के चिंता का निरोध अर्थात परिपंद का अभाव होना ही ध्यान है, इन्हें अभाव कर दिया वही उसी को ध्यान कह दिया। इस दृष्टि से यहाँ ध्यान संज्ञा दी गई है। शंका, इस ध्यान का क्या फल है? समाधान, अघाती चतुष्क का विनाश करना इस ध्यान का फल है। अघाती चार कर्म बाकी है, अभी उसका ये अंतर्मुहूर्त में विनाश होने वाला है। योग का निरोध करना तीसरे शुक्ल ध्यान का फल है। तीसरे का फल क्या था? योग का विनाश, और इसका चार अघाती का विनाश। शैलेशी अवस्था के काल के क्षीण होने पर, यानी चौदहवें गुणस्थान का काल समाप्त होने पर, सब कर्मों से मुक्त हुआ यह जीव, चौदहवें गुणस्थान में तो बस एक एक निषेक गलता है केवल सभी कर्मों का, क्योंकि चौदहवें में एंटर हुआ तब सर्वों कर्मों की स्थिति समान होकर ही आया हुआ। जितने आयु के निषेक है उतने ही सभी कर्मों के, प्रति समय एक एक निषेक गलता है। तो अश्विन भाई, यहाँ उदीर्ण तो होती होगी ना?
नहीं,
नहीं, क्यों?
एक एक निषेक चल रहा है। नहीं, उदीर्ण कैसे होगी?
उदीर्ण ने ऊपर के निषेकों में से नीचे आना।
नहीं
नहीं, पर उदीर्ण से थोड़ी निषेक घटते
नहीं होती है ना?
क्यों नहीं होती? निषेक कहाँ, ऊपर के निषेकों में थोड़े परमाणु नीचे आना को उदीर्ण कहते हैं, उसको स्थिति कांडक नहीं कह रहे हम।
ये तो उदय रूप होना, उसको उदीर्ण कहते हैं।
अन्यत्र उदीर्ण होती है कि नहीं? जहाँ तक आवली प्लस एक समय बाकी है वहाँ तक उदीर्ण चलती है। तो यहाँ होती है कि नहीं होती है, हमारा प्रश्न है।
मेरे हिसाब से देर को इसे ख्याल नहीं होती है, पर उसका कारण
देखो, उदीर्णा की विच्छित्ति तेरहवे के अंत में हो जाती है। आयु की और वेदनी की हुई थी छठे में,
और यहाँ के बाकी
कर्म और बाकी कर्मों की उदीर्णा की विच्छित्ति यहाँ पर हो जाती है। जो उदय रूप है उनकी उदीर्णा तब तक होती थी, तेरहवे के अंत तक उदीर्णा होती थी। देखो, आयु और वेदनी की छठे तक ही होती है, छठे में उसकी उदय की उदीर्णा की विच्छित है। बाद में उदय है पर उदीर्णा नहीं है। किसकी? आयु और वेदनी की, साता साता दोनों की। और बाकी शेष कर्मों में क्या है? अभी जो घाती कर्मों की बात करेंगे, मोहिनी की उदीर्णा कब होगी? उसके अंतिम आवली प्लस एक समय बाकी है दसवें में, तब तक उदीर्णा होगी। घाती की जब तक उसका लास्ट में जो बारहवें के अंत तक एक आवली प्लस एक समय बाकी, तब तक उदीर्णा होगी। अब ये तेरहवें में जो उदय होता है उसी की उदीर्णा होती है, परंतु उनकी उदीर्णा कहाँ तक होगी? अभी तेरहवें के अंत में अभी उदीर्णा की विच्छित हो गई। अब किसी भी कर्म की उदीर्णा नहीं होगी, यहाँ वो विषय नहीं है, परंतु अभी विषय निकला इसलिए बताया। क्या कहा? योग का निरोध करना तीसरे शुक्ल ध्यान का फल है। शैलेशी अवस्था के काल के क्षीण होने पर सब कर्मों से मुक्त हुआ यह जीव, एक एक निषेक गलते गलते, अभी वो निषेक कितना बड़ा होगा आप एक एक इमेजिन करो, यह जीव एक समय में सिद्धि को प्राप्त होता है। एक समय में कैसा? अंतिम निषेक गला और जीव सिद्ध अवस्था को प्राप्त हुआ। इस प्रकार ध्यान नामक तपह कर्म का कथन समाप्त हुआ। ये तप कर्म में हमने 12 भेद देखे थे, वो ध्यान तप की बात 54 पृष्ठ से शुरू पढ़ी थी हमने, और उसके पहले वो जो सारे निक्षेप देखे थे ना, हमने पेज 38 पर देखे थे। कहाँ पर देखे थे? नहीं, 38 पर सभी निक्षेपों के नाम है ना। देखो पेज नंबर 38 पर देखा, अभी तक हमने क्या क्या देखा? नाम कर्म, स्थापना कर्म, द्रव्य कर्म निकालो।
हाँ,
द्रव्य कर्म में क्या लिया था, याद है? हाँ लक्ष्मी, द्रव्य कर्म किसको कहा था? याद नहीं आपको? याद है? हाँ, प्रत्येक द्रव्य की परिणति है उसको द्रव्य कर्म कहा था। ये क्रिया है ना, द्रव्य की क्रिया क्या है? उसकी अपनी परिणति। जीव द्रव्य का ज्ञान दर्शन रूप परिणाम ना ही उसका द्रव्य कर्म है, इस तरह से क्योंकि ये कर्म शब्द क्रिया के अर्थ में है और उस पर ये सब निक्षेप लगा रहे। फिर प्रयोग कर्म से सारे योग लिए थे, मन के वचन के काय के। समवदान कर्म है, 8 कर्मों में, 7 कर्मों में, 6 कर्मों में विभाजित करते हैं। अध कर्म में अधकर्मणी शरीर में हमने लिया था, औदारिक शरीर को अधक कर्म कहते, ये बात ली थी हमने, याद है कि भूल गए? क्योंकि वो
उपद्रवण विद्रवण परितापन ये उपद्रवण विद्रवण बताया था ना।
हाँ वही वही, उसमें देखो जिस शरीर में, पेज नंबर 46 लास्ट लाइन, जिस शरीर में स्थित यानी औदारिक शरीर में स्थित जीवों के उपद्रावण है, उसको उपद्रव होता, विद्रावण यानी उनके अंग छेदन वगैरह, परितापन यानी उनको संताप उत्पन्न करना, आरंभ हिंसा वगैरह जिसके होते हैं, वो शरीर को अधक कर्म कहा था। उसके बाद इरियापथ कर्म की बात बताई थी, जो इरियापथाश्रव और उसका होता है ना, उसकी चर्चा की थी। उसके बाद तप कर्म जो हमने 8 नंबर का जो देखा था तप कर्म, और अभी 9 नंबर पर क्रिया कर्म की बात यहाँ बताएंगे, ये निक्षेप नंबर 9। मैं तो कहाँ से कौन से कॉन्टेस्ट में क्या पढ़ रहे हैं, अब ऊपर 27 नंबर का सूत्र पढ़ेंगे। ये तप की बात 54 नंबर के पृष्ठ से हमने 25-26 सूत्र वहां देखा था। अब कहते हैं जम तम क्रिया कम्मम नाम, अब क्रिया कर्म का अधिकार है, इसके अर्थ का खुलासा करते हैं। तम आदाहीणम पदाहीणम तिक्खुत्तम तियोनदम चदुसिरम बारसावत्तम तम सव्वम क्रिया कम्मम नाम। ऊपर प्राकृत में तम आदाहीणम कर्णाणम, ण के ऊपर बिंदी, तमादाहीण हुआ ना, तमादाहीणम पदाहीणम तो है आपके। अब उसका नीचे अर्थ, आत्माधीन होना, प्रदक्षिणा करना, पदाहीणम है ना, तीन बार करना, तीन बार अवनति, चार बार सिर नवाना और 12 आवर्त, यह सब क्रिया कर्म है। पहले बताए ना, वो तो साधुओं के और श्रावक के भी होते हैं। अभी उसका अर्थ बताएंगे। आत्माधीन होना आदि के भेद से वह क्रिया कर्म 6 प्रकार का है। उनमें से क्रिया कर्म करते समय आत्माधीन होना अर्थात परवश न होना आत्माधीन होना कहलाता है, यानी वो स्वयं कर रहा है, किसी वो जबरदस्ती से नहीं कर रहे। स्कूल में भले आपको बताते कोई ये करो वो करो जबरदस्ती कर रहे, वैसा यहाँ नहीं है, ये मुनिराज स्वयं कर रहे। शंका, पराधीन भाव से क्रिया कर्म क्यों नहीं किया जाता है? समाधान, नहीं, क्योंकि उस प्रकार क्रिया कर्म करने वाले के कर्मों का क्षय नहीं होता और जिनेन्द्र देव आदि की आसाधना होने से कर्मों का बंध होता है। अभी नहीं हो पराधीन होकर करता है तो उनकी आसाधना, कि मन में तो नहीं है नमस्कार करने के भाव और देखा देखी करना चाहता है तो कहते आसाधना हो रही है। अभी केवल क्रिया करने से कर्मों का क्षय नहीं हो रहा है, कर्मों का क्षय तो उनके, ये तो सम्य दृष्टि है, मुनिराज है और उनके तो इतने आत्मस्थिरता चल ही रही है, फिर भी उनके ऐसे जब वो शुद्धोपयोग में नहीं है तो ये क्रियाएं उनकी होती है, परंतु वहां जो उनकी वीतरागता है उसी से कर्म क्षय होता है, फिर भी आरोप इन पर आएगा। पर ये क्रिया करते हुए उनके तो शुभ भाव है ना उनके प्रति, अब अगर उसमें तो शुभ भाव भी नहीं हो गए, अरे सब करते तो अभी करना पड़ता है क्या करे, ऐसा तो होगा नहीं, तो ऐसा होता है तो कहते वो तो कर्मों का क्षय का कारण नहीं बनेगा, वो तो मिथ्यात्व का दोष हो जाएगा वहां तो। तो कहते आत्माधीन होना है। वंदना करते समय गुरु जिन और जिन गृह की प्रदक्षिणा करके नमस्कार करना प्रदक्षिणा है। प्रदक्षिणा और नमस्कार आदि क्रियाओं का 3 बार करना त्रिकृत्वा है। मंदिर में भी वो प्रदक्षिणा देते, तीन बार प्रदक्षिणा देते नमस्कार करते, ये उसी का रह गया है। अथवा एक ही दिन में जिन गुरु और ऋषियों की वंदना तीन बार की जाती है इसलिए इसका नाम त्रिकृत्वा है। हम कहते सुबह दोपहर शाम ऐसे तीन बार किए जाते हैं, उसको भी उसके लिए भी तीन बार कहेंगे, या एक ही बार वो तीन प्रदक्षिणा के रूप में तीन बार नमस्कार वो भी हो सकता है। शंका, तीनों ही संध्या कालों में वंदना की जाती है, अन्य समय में क्यों नहीं की जाती है? तीनों संध्या काल ने प्रातः काल, मध्यान्ह और शाम की बात। समाधान, नहीं, क्योंकि अन्य समय में भी वंदना के प्रतिषेध का कोई नियम नहीं है। अन्य समयों में नहीं की जाती ऐसी कोई बात नहीं है, तीन समयों में की जाती बताया, तो अन्य समयों में वंदना का निषेध तो है ही नहीं है। तीनों संध्या कालों में वंदना के नियम का कथन करने के लिए त्रिकृत्वा ऐसा कहा गया है। अभी वो क्या क्या कैसे होता है उसको बताएंगे कैसे करते हैं। ओणद का अर्थ अवनमन अर्थात भूमि में बैठना है, वह तीन बार किया जाता है, इसलिए तीन बार अवनमन करना कहा। तीन बार बैठना, एक बार बैठ के फिर उठकर फिर बैठना, फिर उठकर फिर बैठना नमस्कार करते समय। यथा शुद्ध मन, धौतपाद ने पैर, मुनि तो करेंगे तो कमंडल में जल है ना, उससे पैर धोएंगे, और जिनेन्द्र के दर्शन से उत्पन्न हुए हर्ष से पुलकित वदन होकर जो जिनदेव के आगे बैठना, यह प्रथम अवनति है। यानी शुद्ध मन से और जिनेन्द्र भगवान के दर्शन से उल्लसित होकर बैठना वो पहली अनुमति, तथा जो उठकर जिनेन्द्र आदि के सामने विज्ञप्ति कर बैठना यह दूसरी अवनति है। विनय करके बैठना विज्ञप्ति, फिर उठकर सामायिक दंडक के द्वारा आत्मशुद्धि करके कषाय सहित देह का उत्सर्ग करके, कषाय सहित देह ने कषाय का भी उत्सर्ग और देह का भी उत्सर्ग दोनों का लक्ष्य छोड़कर जिनदेव के अनंत गुणों का ध्यान करके 24 तीर्थंकरों की वंदना करके फिर जिन जिनालय और गुरु की स्तुति करके जो भूमि में बैठना वह तीसरी अवनति है।
ये सामायिक दंडक से क्या लेना?
वो जो बोलने की बात है ना, सामायिक दंडक के द्वारा आत्मशुद्धि करके। अभी उसमें भी जो सिर नवाना नमस्कार करना वो सब सामायिक दंडक में आ जाएगा, बताएंगे भी आगे। कहाँ गया? इस प्रकार एक एक क्रिया कर्म करते समय तीन ही अवनति होती है। अवनति किसको कहा? भूमि पर बैठने को, है ना, यानी नमस्कार करके बैठने को, खाली बैठा उठा बैठा वो तो ये उसको अवनति के। सब क्रिया कर्म चतुशिर होता है, ये हमने जो सूत्र में देखा आत्माधीन होता है, फिर प्रदक्षिणा करना तीन बार करना, तीन बार अवनति हुई, चार बार सिर नवाना, इसको चतुशिर कहा था। यथा सामायिक के आदि में जो जिनेन्द्र देव को सिर नवाना वह एक सिर है, उसी के अंत में जो सिर नवाना वह दूसरा सिर है, थोस्सामी दंडक के आदि में जो सिर नवाना वह तीसरा सिर है, उसी यानी वो पाठ है ना वो उसका थोस्सामी, उसी के अंत में जो नमस्कार करना वह चौथा सिर है। इस प्रकार एक क्रिया कर्म चतुशिर होता है।
ये अंत में दो बार है, उसी के अंत में जो सिर नवाना वो दूसरा सिर है, और अच्छा ये थोस्सामी के बारे
में देखो देखो, पहले सामायिक के आदि और अंत में, और थोस्सामी के आदि और अंत में। इससे ये एक क्रियाकर्म चतुशीर होता है। इससे अन्यत्र नमन का प्रतिषेध नहीं किया गया है, क्योंकि शास्त्र में अन्यत्र नमन करने के नियम का कोई प्रतिषेध नहीं है। यानी चार ही बार करना अन्यत्र करना नहीं, ये बात नहीं हो रही है। अथवा सभी क्रिया कर्म चतुशिर अर्थात चतु प्रधान होता है, क्योंकि अरिहंत सिद्ध साधु और धर्म को प्रधान करके, जिसे हम चत्तारी मंगल वगैरह कहते ना, चत्तारी दंडक, अभी मुनियों के लिए तो और भी सामायिक दंडक वगैरह भी होते हैं ना वो सब। हाँ, अब पहले के जमाने में वो प्राकृत पाठ वगैरह होते सभी। हाँ, मुनियों के लिए तो जो दस भक्ति भी होती ना, सिद्ध भक्ति अरिहंत भक्ति वगैरह, वो अलग अलग बातें होती थी। होता है। हाँ, निश्चय 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 कहते, निश्चय ने हम बाकी अपने बाकी बातों का निषेध करते सांसारिक विकल्पों का। पहले हम जब बच्चे थे हमको ऐसा कहते निश्चय, वो तो बताते थे वहाँ जो कोई अन्य जो देव वगैरह उनको निश्चय बाजू है, उनको ऐसा भी अर्थ करते हैं। हाँ, अथवा सेकंड लाइन 90 पेज पर, सभी क्रिया कर्म चतुशिर अर्थात चतु प्रधान होता है, क्योंकि अरिहंत सिद्ध साधु और धर्म को प्रधान करके, वो आता है चत्तारी लघुत्तमा, हाँ, केवली पन्नत्तम धम्मम, वो धर्म, सब क्रिया कर्मों की प्रवृत्ति देखी जाती है। सामायिक और स्थोसामी दंडक के आदि और अंत में मन वचन और काय की विशुद्धि के परावर्तन के वार 12 होते हैं। परावर्तन यानी वो जो इस तरह से एक नमस्कार में 3 बार ऐसा हाथ जोड़कर परावर्तन करते हैं, इसलिए एक क्रिया कर्म 12 आवर्त से युक्त कहा है। यह सब ही क्रिया कर्म है। ऐसे भी आता है चारों ही दिशाओं में मुख करके वो एक एक नमस्कार वो सब, ये सब क्रिया की जाती है। हाँ, 4 नमस्कार हुए और एक एक नमस्कार में 3-3 आवर्त। अब भाव कर्म का अधिकार है। अब यही हमारा जो लास्ट वाला निक्षेप है ना, निक्षेप नंबर 10 होगा ये ना,
10वां नंबर,
भाव कर्म का अधिकार है। इसके अर्थ का प्ररूपण करके ऊपर है ना, जम तम भाव कम्मम नाम। अब भाव कर्म का अधिकार है, इसके अर्थ का प्ररूपण करते हैं। उवजुत्तो पाहुड़ जानगो तम सवम भाव कम्मम नाम। भाव निक्षेप कैसे लगाते थे, उस संबंधी पाहुड़ को जानने वाला, उसमें उपयोग वाला, जो उपयुक्त भाव उपयुक्त प्रावृत का ज्ञाता है वह सब भाव कर्म। उपयुक्त प्रावृत का कहते हैं प्रावृत का ज्ञाता है और प्रावृत में ही उपयोग वाला है। कर्म प्रावृत का ज्ञाता होकर, कर्म प्रावृत यानी वो क्रिया संबंधी प्रावृत, कर्म प्रावृत यानी हमारे 8 कर्म जो है ज्ञानावरण आदि, उसकी बात नहीं है। विषय हमारा कर्म का चल रहा है वो क्रिया संबंधी है। उसका ज्ञाता होकर जो उपयुक्त है वह भाव कर्म है, यानी उसी में उपयोग वाला। विशेषार्थ, सूत्र में आगम भाव कर्म का लक्षण कहा है। हमेशा भाव निक्षेप के 2 भेद होते हैं, आगम और नो आगम। अभी नो आगम में अभी वो ज्ञाता तो नहीं लेना है, परंतु कुछ क्रियारूप परिणत ऐसा लेना पड़ेगा जीव। तो आगम भाव कर्म का लक्षण कहा। इसका दूसरा भेद नो आगम भाव कर्म है। प्रकृत में भाव कर्म के प्रथम भेद आगम भाव कर्म का ही सूत्र में निर्देश है, क्योंकि प्रावृत का ज्ञाता उसमें उपयोग वाला जीव इतना ही किया, उन्होंने नो आगम की बात की ही नहीं है। तो इस तरह से अभी हमने 10 निक्षेप देखे पहले में पहले, क्योंकि पहला हम कोई भी विषय है तो उसमें तो हमारा विषय कौन सा चल रहा है, कर्म अनुयोग द्वार, कर्म यानी क्रिया संबंधी अनुयोग द्वार। तो इसके 10 भेद बताए और कौन सा नहीं किसको विषय करता है वो तो पहले ही बता चुके हैं। अब इतना सब पढ़ने के बाद अब पूछ रहे बोल रहे एदेसिम कम्माणम, ये कमणाणम हुआ है, कम्माणम करो डबल म, पुराने पुस्तकों में, एदेसिम कम्माणम केण कम्मेण पयदम समोदान कम्मेण पयदम, इन कर्मों का किस कर्म से प्रयोजन है, यानी इन कर्मों में से हमारा प्रयोजन क्या है, कौन सा प्रयोजन है कर्म से? तो कहते समवदान कर्म से प्रयोजन है। समवदान याद आया, आठ कर्मों में विभाजित होना या सात कर्मों में या छह में वो भेद होना, वही समवदान कर्म था। हाँ, तो समवदान कर्म से प्रयोजन है क्योंकि कर्म अनुयोग द्वार में समवदान कर्म का ही विस्तार से कथन किया है, वो विस्तार हुआ विस्तार से, अथवा संग्रह नय की अपेक्षा ऐसा कहा है। मूल ग्रंथ में तो प्रयोग कर्म ग डालो, प्रयोग कर्म, प्रयोग कर्म समवदान कर्म अधः कर्म इरियापथ कर्म तप कर्म और क्रिया कर्म प्रधान है क्योंकि वहां इनका विस्तार से कथन किया है। क्या कहा? यहाँ तो इतने विस्तार किस किस का किया? प्रयोग कर्म यानी जो योगों के बारे में मनोयोग वचन योग कायोग की बात बताई थी 44 नंबर के पेज पर देखी थी। समवदान कर्म जो आठ कर्म में विभाजित होता है सात में छह में 45 पेज पर बताया था। अधक कर्म हमने देखा था ना, ये शरीर को ही जो कहा था तो 46 पर आई थी बात। इरियापद कर्म को भी विस्तार से समझाया था, वो 47 पर बताया था। तप कर्म भी 54 से लेकर यहाँ तक बहुत विस्तार से समझाया था। और क्रिया कर्म अभी ये जो सामायिक और तोसामी दंडक वगैरह वगैरह वो भी अभी 88 पेज पर बताता है, वो प्रधान है क्योंकि वहां इनका विस्तार से कथन किया है, यानी उसकी भी प्रधानता है, इतना बताना चाहते हैं। यहाँ इन छह कर्मों को आधार मानकर, कौन सा? प्रयोग कर्म, समवदान कर्म, अधक कर्म, इरियापत कर्म, तप कर्म और क्रिया कर्म। इन छह कर्मों को आधार मानकर सत, द्रव्य, क्षेत्र, स्पर्शन, काल, अंतर, भाव और अल्पभूतव इन अनियोग द्वारों का कथन करते हैं। यथा आपको इसका सूत्र मालूम है अश्विन भाई, ये कौन से अल्प अनुयोग द्वार बताएं? सद द्रव्य क्षेत्र स्पर्शन काल। हाँ लक्ष्मी को याद होगा। हाँ अल्पभूतवश्च यानी किसी विषय को जानने का ये तरीका है। सत यानी वो है इसका निर्देश करना। संख्या ये द्रव्य का अर्थ है, संख्या द्रव्य प्रमाण किसको कहेंगे? संख्या को, यही तो बात कहते हैं यहाँ पर। अभी इतने अनुयोग द्वारा इतने अधिकारों के द्वारा इनके डिटेल्स जानना चाहिए, वो हम कल देखेंगे। 91 स्टार्टिंग से पढ़ेंगे कल। जावानी के ज्ञान ते सूजे लो कालो सोवाणी मस्तकन सदा देत हो। मैं